आज है 28 मार्च दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। राजधानी में विपक्षी एकता की कोशिशें तेज, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मिलेंगी? लेंगे ताजा जानकारी। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की गणित और 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा फिर से कराने का ऐलान किया। उधर एसएससी घोटाले में 4 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि पर्चा कैसे लीक किया जाता है।
कुछ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर एक कंप्यूटर लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं और जहां भी ऑनलाइन परीक्षा हो रही है हम उसमें जाकर सेंटर बन गए।
श्रीलंका में मुसलमान विरोधी दंगों के कारण और असर पर दुनिया जहान में होगा विस्तृत विश्लेषण।
वो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बुद्धिस्ट का, जिसे हम लोग देखते हैं इस्लामिक धर्म में, हिंदू धर्म में एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं।
ये सब विश्व समाचारों के बाद।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा से मुलाकात की। ये तीनों नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के आलोचक रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है और अब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाली हैं। इससे पहले मंगलवार को ममता बनर्जी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और डीएमके की कानीमोड़ी से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि उनकी ये कोशिश साल 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मजबूत मोर्चा खोलने के लिए है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा के 2 पेपर लीक होने के बाद बोर्ड ने 10वीं की गणित की परीक्षा और 12वीं की अर्थशास्त्र की परीक्षा दोबारा कराने की घोषणा की है। सीबीएसई का कहना है कि दोबारा ली जाने वाली परीक्षाओं की तारीख की जानकारी हफ्ते भर के भीतर सीबीएसई की वेबसाइट पर डाली जाएगी। इधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पेपर व्हाट्सएप के जरिए आधे घंटे पहले ही लीक हुआ था और सरकार आगामी परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े नियम बनाएगी। दिल्ली पुलिस ने सीबीआई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मलेशिया में विपक्षी नेताओं और गणतंत्र समर्थकों ने सरकार को चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करने के फैसले के विरोध में देश की संसद तक मार्च किया। विपक्ष का कहना है कि चुनावों से कुछ सप्ताह पहले मलेशियाई सरकार नस्लीय भेदभाव के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना चाहती है और ऐसा करके वो सत्ता में बने रहना चाहती है। विपक्षी नेता मारिया चिन अब्दुल्ला ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा, सत्ता पर काबिज रहने के लिए उन्होंने सही मायनों में कानून को तोड़ा है और संविधान का अपमान किया है। उन्होंने ऐसी रिपोर्ट पेश की है जिसमें एक व्यक्ति एक वोट का प्रतिनिधित्व भी नहीं होता। हम इस फैसले से नाराज हैं, हम गुस्से में हैं और संसद को इस रिपोर्ट को देखना भी नहीं चाहिए। इसे तुरंत खारिज कर दिया जाना चाहिए। मलेशिया की विपक्षी नेता मारिया चिन अब्दुल्ला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हाल में हुए हमले में मारे गए पुलिस कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल आर्नल्ड बेलस्ट्रोम को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पेरिस में आयोजित किए गए खास कार्यक्रम में उन्होंने बेलस्ट्रोम को फ्रांस का हीरो बताया। 44 साल के बेलस्ट्रोम मरणोपरांत फ्रांस का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीशन ऑफ ऑनर दिया गया है। बीते सप्ताह दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के ट्रेबेस में एक सुपरमार्केट में एक हमलावर ने लोगों को बंधक बना लिया था। उस वक्त लेफ्टिनेंट कर्नल आर्नल्ड बेलस्ट्रोम ने बंधकों के बदले खुद को हमलावर को सौंप दिया था। इमैनुअल मैक्रों ने कहा,
Dès que nous eûmes appris son geste, à l'issue incertaine, nous tous.
जैसे ही हमें पता चला कि क्या हुआ है, पूरा देश कांप उठा, हम थर्रा गए। हम में से एक था जो बहादुर था, वो सब देख सकता था और सोच सकता था। उन्होंने इस्लामी हिंसा, नफरत और खून के लिए पागलपन का सामना किया। उनके साथ देश की इज्जत भी बढ़ी। नफरत के विरोध में फ्रांस की भावना भी इस एक व्यक्ति की बहादुरी के कारण और मजबूत हुई है। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के शब्द। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें बताया गया है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के बीच हुई बैठक सकारात्मक रही है। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। اگلا لوک سبھا چناؤ ابھی ایک سال دور ہے، لیکن راجدھانی دلی میں وپکشی ایکتا کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ اس سلسلے میں سوموار سے ہی پشچم بنگال کے مکھیہ منتری اور ترنمول کانگریس پرمکھ ممتا بینرجی دلی میں ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق وہ یشونت سنہا، شتروگھن سنہا اور ارون شوری جیسے بھارتی جنتا پارٹی کے اسنتشٹ نیتاؤں سے سمپرک کر رہی ہیں۔ وہیں دوسری اور کانگریس نیتا سونیا گاندھی سے بھی ملاقات کی سمبھاونا جتائی جا رہی ہے۔ آج دن بھر کے ہلچلوں پر بی بی سی بنگلہ سیوا کے ہمارے ساتھی شبھ جیوتی گھوش کی نظر رہی، اور اس سمے وہ جانکاری دینے کے لیے ٹیلی فون کے ذریعے ہمارے سمپرک میں ہے۔ شبھ جیوتی، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ممتا بنرجی کی ملاقات سونیا گاندھی سے آج شام کو ہونی ہے؟
دیکھیے، ابھی تک تو خبر ویسے ہی ہے کہ سونیا گاندھی سے وہ آج ہی شام کو مل رہی ہے، لیکن ان کا کنفرمیشن پارٹی سے ابھی تک نہیں آیا ہے۔ پارٹی سورسز نے یہی بتایا کہ میٹنگ اگر ہوں گے تو آپ کو ہم ضرور بتائیں گے، آپ کو جانکاری ملے گا، لیکن میٹنگ ابھی تک ہوا یا ہونے جا رہا ہے ایسا کوئی پشٹی ابھی تک نہیں ہوا ہے۔
اچھا، اور جو اسنتشٹ بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں سے ان کی ملاقات کی بات کہی جا رہی تھی، جیسے شتروگھن سنہا ہیں، جیسے یشونت سنہا ہیں اور ارون شوری،
وہ ضرور ہوا۔ شتروگھن سنہا، ارون شوری اور یشونت سنہا سے وہ آج دن کے پہلی ہاف میں، فرسٹ ہاف میں ممتا بینرجی ملی تھی، اور ملنے کے بعد ارون شوری یہ بھی کہا ہے کہ ممتا بینرجی نے جو ون ورسز ون فارمولا 2019 الیکشن کے لیے جو پیش کیا ہے، مطلب ایک بی جے پی کینڈیڈیٹ کے خلاف ایک یونائٹیڈ اپوزیشن کینڈیڈیٹ، یہ ہر کنسٹیٹوئنسی نے دیش میں نشچت کرنے کے لیے جو پریاس میں وہ جٹی ہے، تو ارون شوری بھی اسی کو کروریٹ کر کے یہ بتایا کہ یہی دس از دا نیسیسٹی بی جے پی کے ہرانے کے لیے، یہی یونٹی ہم کو چاہیے اور ایک کے خلاف ایک یہ فارمولا لے کر چلنا ہے۔ سو باقی بی جے پی نیتاؤں سے بھی ممتا کو سمرتھن ملی ہے۔
لیکن اب تھوڑا سا اس کے وشلیشن پر آ جائیں شبھ جیوتی، پشچم بنگال میں کیا ممتا بنرجی چاہیں گی کہ ان کی جو مضبوط پکڑ ہے فی الحال وہ لوگوں میں بٹے؟ اگر وہ چناؤ سے پہلے کسی طرح کا سامنجس کرتی ہیں کانگریس پارٹی سے یا راہل گاندھی کے نیترتو والی کانگریس پارٹی سے کہیے، تو کیا اس کے لیے تیار ہو جائیں گی؟
دیکھیے، اس کی یہ ایک پوائنٹ آف کنٹینشن ہے جس کو آپ بول سکتے ہیں کہ اپوزیشن یونٹی اگر ہوں گے بھی، وہ کیا بنا کانگریس ہوگا یا کانگریس کو ساتھ لے کر ہوگا؟ کانگریس، یہ سب کو پتا ہے کہ ممتا بینرجی از ناٹ ویری کمفرٹیبل وتھ راہل گاندھی، دا کرنٹ کانگریس پریسیڈنٹ، لیکن وہ یہ مانتی ہے کہ سنیا جی کے ساتھ ان کا سمپرک، ویکتیگت سمیکرن جو بھی کہے وہ اچھے ہے، تو اسی لیے وہ راہل سے نہیں سنیا گاندھی سے مل رہے۔ لیکن اب جو سوال پوچھ رہے تھے کہ ویسٹ بنگال میں کیا ہوگا، ابھی دیکھیں ممتا کے پاس 34 ایم پیز ہے لوک سبھا میں، جو 42 میں 42 آسن میں 34 ممتا کے ہے، تو ممتا اس پہ کتنے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے اپوزیشن یونٹی کے لیے، یہ ایک دیکھنے لائق چیز ہے۔ لیکن وہ زیادہ سے زیادہ دو چار ہی کانگریس کو چھوڑنے گے اگر کانگریس کے ساتھ کوئی تال میل ہوں گے، تو ترنمول کا کہنا ہے ان کو دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، بٹ شی وانٹس ٹو انشور اے پین انڈیا اپوزیشن یونٹی،
یعنی پورے بھارت میں وپکش کی ایکتا کی کوشش وہ کر رہی ہیں۔ یہ تو خیر ابھی چلتی ہوئی ایک طرح کی پرکریا ہے۔ شبھ جیوتی گھوش، فی الحال آپ کا بہت بہت دھنیواد۔ اس معاملے میں اور کوئی جانکاری ہوگی تو ہم اپنے شروتاؤں تک بعد میں پہنچائیں گے۔ ہمارے وہ شروتا، یوا شروتا، جنہوں نے کیندری مادھیمک شکشا پریشد یعنی سی بی ایس ای کے ذریعے دسویں ککشا کی پریکشا دی تھی اور بارہویں ککشا کی پریکشا دی تھی، ان کے لیے خبر ہے کہ سی بی ایس ای نے دسویں ککشا میں گنت وشے اور بارہویں میں ارتھشاستر کی پریکشا پھر سے کروانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری ہمارے پاس فی الحال نہیں ہے، لیکن یہ کچھ دن پہلے آروپ لگا تھا کہ ان پریکشاؤں میں گڑبڑی ہوئی ہے۔ ادھر کیندری کرمچاری چین آیوگ کی پریکشا کا پرچہ لیک ہونے کے معاملے میں اتر پردیش اور دلی پولیس نے دلی کے تیمارپور علاقے سے چار لوگوں کو گرفتار کیا تھا۔ آروپ ہے کہ یہ لوگ امتحان پاس کرانے کے لیے 10 سے 15 لاکھ روپے کی راشی وصول کرتے تھے۔ اسی سال فروری میں ایس ایس سی کے پرتیوگیوں نے پرچہ لیک ہونے کے بعد ورودھ پردرشن کر کے پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی تھی۔ اتر پردیش پولیس کے مہانرکشک امیتابھ یش نے بی بی سی سنواددتا انت پرکاش کو اس گروہ کے کام کرنے کے طریقے کی جانکاری دی۔
پولیس کے مطابق یہ گروہ کرمچاری چین آیوگ کی پریکشاؤں میں انٹرنیٹ کی مدد سے پریکشارتھیوں کے لیے پیپر حل کرتا تھا۔ پولیس نے گرفتار کیے گئے لوگوں سے 50 لاکھ روپے، 3 مہنگی گاڑیاں، کئی موبائل فون، پین ڈرائیو اور ہارڈ ڈسک ضبط کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ यूपी पुलिस के मुताबिक ये लोग कंप्यूटरों को रिमोट एक्सेस करके घोटाला करते थे। आईजी अमिताभ यश ने बीबीसी को बताया कि आजकल परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं और इसीलिए नकल के नए तरीके भी इजाद हो रहे हैं।
ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, इसमें दो तीन तरीके से नकल हो रही है। किसी भी सेंटर में अगर किसी कंप्यूटर पर मैलवेयर डाल और फिर उस कंप्यूटर का वो रिमोट एक्सेस टूल से आप दूर से कंट्रोल करने लगे इंटरनेट के माध्यम से, तो उसके स्क्रीन पे जो भी आर हो रहा है और वहाँ जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है वो आप दूर से कंट्रोल कर सकते हैं, तो एक दूसरा आदमी बैठ करके उस एग्जाम को दे सकता है।
रिमोट एक्सेस दरअसल एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी मदद से इंटरनेट के सहारे आपके सामने रखे कंप्यूटर को मीलों दूर बैठा शख्स ऑपरेट कर सकता है। वह आपके कंप्यूटर पर टाइप कर सकता है, कुछ डिलीट कर सकता है और वह आपके कंप्यूटर को बंद तक कर सकता है। आईजी अमिताभ यश ने बताया कि एसएससी की परीक्षा से जुड़े मामले में भी यही तरीका इस्तेमाल किया गया है, पर ऑनलाइन एग्जाम में नकल के कई और भी तरीके सामने आए हैं।
दूसरा क्या हो रहा है कि कुछ फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स एक कंप्यूटर लैब एस्टेब्लिश कर रहे हैं और जहां भी ऑनलाइन परीक्षा हो रही है हम उसमें जाके सेंटर बन गए, तो फिर ऑब्वियसली तब तो सब कुछ ही मेरा है, मैं उसमें सब कुछ मैनिपुलेट कर लूंगा।
एसएससी अपने इम्तिहान कराने के लिए कुछ ऑनलाइन सेंटर्स तय करती है जहां पर एसएससी छात्रों को कंप्यूटर पर परीक्षा देनी होती है। आईजी अमिताभ यश लेकिन इस घोटाले का एक दूसरा तरीका भी बताते हैं।
पेपर जो है सेंटर पे डाउनलोड होता है, उसको डीकोड होता है, सिस्टम के चेक्स एंड बैलेंसेस अच्छे नहीं है, उसका सिस्टम अच्छा मतलब बहुत वेल डिजाइन नहीं है, इनक्रिप्शन की अगर आपकी स्ट्रांग नहीं होगी तो बहुत आसानी से डिक्रिप्ट हो जाएगा, कोई सेंटर आपका कभी भी पेपर डाउनलोड कर लेगा और उसको फिर डिक्रिप्ट करके लीक कर देगा।
एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र महीने भर से देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी मांग थी कि केवल 21 फरवरी के हुए एसएससी के पेपर लीक की सीबीआई जांच ना हो बल्कि पहले हुई सभी परीक्षाओं की जांच सीबीआई से हो। इसके बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में उनकी मांग स्वीकार करते हुए कहा था कि छात्र अब अपना प्रदर्शन रोक दें और जाँच रिपोर्ट का इंतजार करें। इसी बीच दिल्ली और यूपी की पुलिस को ये कामयाबी हासिल हुई है।
ये रिपोर्ट थी अनंत प्रकाश की। और अब चलते हैं कर्नाटक, जहां विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी के नए नए रंग दिख रहे हैं। 3 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनता दल सेक्युलर पर तगड़ा हमला बोला था और उसे बीजेपी की बी टीम बताया था। तो क्या वाकई जनता दल एस वोट बांटने का काम करेगी और कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक पाएगी? बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
राहुल गांधी ने इतवार को मैसूरु की रैली में कहा था कि जनता दल सेक्युलर या जेडीएस अभी सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष पक्ष नहीं है, बल्कि उसमें जुड़े एस को संघ परिवार कहा जा सकता है क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम बन गई है। इस पर जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो बचकानापन था। बहरहाल सवाल ये है कि क्या सचमुच जेडीएस कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक सकती है? मैसूर यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर मुसफ़र असदी कहते हैं कि जेडीएस का जातीय आधार मजबूत नहीं रहा। करीब 2005 से जनता दल सिर्फ वकलिगा समाज की पक्ष बन गई है। उस समय तक जेडीएस को वकलिगा और कुरुबा समाज यानी ओबीसी जाति का समर्थन था। उससे पहले 90 के दशक में जनता दल को मुस्लिम ओबीसी वकलिगा और दलित यानी एमओवीडी का समर्थन हासिल था, लेकिन एमओवीडी कभी का टूट गया। ये थे प्रोफेसर मुसफ़र असदी के शब्द। जनता दल का समर्थन ज़्यादातर दक्षिण कर्नाटका के जिलों में है जहां वकलिगा ही प्रभावी जाति मानी जाती है। इस इलाके में 94 सीटों में से 2013 चुनाव में जेडीएस को 33 सीटें मिली थी। कर्नाटका के कांग्रेस प्रवक्ता श्रीकंठ मूर्ति भी जेडीएस की कमजोरी को रेखांकित करते हैं।
कांग्रेस विल कम बैक टू पावर वेदर जेडीएस इज देयर ऑर नॉट।
जनता दल एस अभी बहुत ही कमजोर हो गई है जब से उसके समर्थन देने वाले जातियों ने छोड़ दिया है। हमारे हिसाब से जेडीएस को 27 से 30 सीट मिल सकते हैं। ये थे श्रीकंठ मूर्ति के शब्द। कांग्रेस का मानना है कि जनता दल एस का 57 सीटें जीतना ही उसकी 2004 की हार की वजह थी जिससे उसने गठबंधन सरकार बना ली। 2 साल बाद जनता दल एस ने कांग्रेस सरकार को छोड़ दिया और बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार बना लिया। जब राज्य जनता दल एस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी के बीएस येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा तो 2008 में दक्षिण भारत में पहली बार बीजेपी सत्ता में आ गई। तो इस समय क्या कुमार स्वामी किंग बनेंगे या किंग मेकर? एचडी कुमार स्वामी ने बीबीसी से कहा कि उनकी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में होगी। हम ये नहीं समझते कि इस बार यहाँ हंग असेंबली बनेगी। हमारी दिशा इस पर है कि हमारी सरकार बनेगी। हम कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक लगाने की सोच नहीं रह रहे हैं। ये थे एचडी कुमार स्वामी के शब्द। दरअसल राजनीतिक हलाकों में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का जेडीएस पर आक्रमण सिद्धरामैया के सलाह पर कर दिए। एक कांग्रेस के नेता ने अपना नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि अगर कांग्रेस को अपने बल पर बहुमत नहीं मिला तो फिर से जेडीएस का ही समर्थन लेना पड़ेगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
और दिन भर कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, राजेश जोशी। बीबीसी शी के तहत महिलाओं की बात जानने सुनने के लिए बीबीसी की टीम इन दिनों अलग अलग शहरों में जा रही है। दिव्या आर्य पहले पटना गईं, फिर विशाखापत्तनम और आज वो हैं तमिलनाडु के शहर कोयम्बटूर में। मैंने कुछ ही देर पहले उनसे फ़ोन पर संपर्क किया और पूछा कोयम्बटूर का मौसम कैसा है।
कोयम्बटूर क्योंकि तमिलनाडु में है जो कि भारत की सबसे विकसित राज्यों में से एक है, तो जाहिर है बिहार के नज़ारे में और यहाँ में बहुत फर्क है। सड़कें बहुत अच्छी हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है और क्योंकि ये तट के कुछ हद तक नज़दीक है, तट से तो दूर है पर बिहार जैसा नहीं है तो गर्मी नहीं है, यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक महिला व्यवसायी भी जो है देश में उसमें से एक बड़ी संख्या तमिलनाडु में है और वो भी कोयम्बटूर में।
तो क्या महिलाओं से आपकी मुलाकात जरूरी हुई होगी, क्या उनकी इच्छा है, क्या चाहना है ये बताइए।
कुछ चाहत तो उनकी बिल्कुल वैसी है जैसी हम लोगों की उत्तर भारत में है, पर कुछ बातें यहाँ से भी निकल के आई। हम लोग एक यूनिवर्सिटी की छात्राओं से मिले थे और काफी खुल के उन्होंने अपनी बात रखी और खासतौर पर मीडिया पर उनकी जो सोच थी वो बहुत ही साफ और सटीक तरीके से उन्होंने कहा कि मीडिया बहुत सारी बातों पर अपनी खबरें इस तरह से रखता है कि उससे एक सकारात्मक नहीं बल्कि एक नकारात्मक सा माहौल बनता है और उससे औरतों की जिंदगी और सीमित हो जाती है। मैं उन्हीं की जबानी आपको सुनाना चाहूंगी।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मीडिया में सिर्फ नेगेटिव इश्यूज बताते हैं तो पेरेंट्स के अंदर डर बढ़ जाता है कि मेरी लड़की सेफ नहीं है, मेरी लड़की यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती। तो मीडिया को पॉजिटिव रिपोर्टिंग देना चाहिए कि यहाँ ये भी हो रहा है, इतना इश्यूज रेमेडीज निकाल रहे हैं कि लॉ इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और जब ये दिखाएंगे तो पेरेंट्स के अंदर विश्वास और चेंजेस आएंगे तो लड़की को वो लोग बाहर छोड़ेंगे।
यानी महिलाओं की जो चिंताएं उत्तर भारत में हैं वही दक्षिण भारत में भी हैं।
हाँ, और ये इसलिए ज्यादा चिंताजनक है राजेश जी क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता की दर ही नहीं बल्कि उच्च शिक्षा में महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है या जो महिलाओं का दाखिला होता है वो भारत में सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। यानी कि कुछ हद तक बात आगे बढ़ी है, औरतों के लिए मौके बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कई चीजें हैं जो रोकती हैं। और औरतें किस तरह का काम करती है इसके बारे में मीडिया की जो रिपोर्टिंग है, शादी की क्या उनकी जिंदगी में अहमियत है, इन सब बातों पर भी इन औरतों के मुताबिक मीडिया का जो खबर कहने का नजरिया है वो उनके विकल्प खोलता नहीं बल्कि बंद करता है।
साउथ इंडिया में विमेन बहुत कम रिप्रेजेंट करता है इंडियन आर्म फोर्सेस को, और सिर्फ एक एकेडमी है जो इंडियन जो विमेन को ट्रेन करता है ऑफिसर बनने के लिए, वो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। तो अवेयरनेस भी बहुत कम है, तो अगर वीडियो अगर कवरेज मीडिया अगर उस एरिया को कवर करे तो वुमेन को बहुत सारा इंकरेजमेंट मिलेगा इस इंडियन आर्म प्रेस्टिजियस इंडियन आर्म फोर्सेस में जाने के लिए। वी आवरसेल्व्स कैन प्रूव दैट वी आर इक्वल टू मेन।
इन युवतियों से बात करके आपको क्या लगा कि क्या कोई रास्ता उनको सुझाई देता है?
कुछ हद तक समाज से लड़ना, अपने परिवार से लड़ना, चाहे वो रात में घर से बाहर निकलने को लेकर है, शहर से बाहर जाके पढ़ाई करने को लेकर है, ये काफ़ी हद तक हमारे साथ हमारे हाथ में है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम समानता आ गई है, लेकिन हाँ औरतें ज़्यादा सशक्त जरूर सुनाई थी मुझे यहाँ पर।
ये थी दिव्या आर्य। और अब समय है दुनिया जहान का। इस साल फरवरी की शुरुआत में श्रीलंका में 70वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जा रहा था, मगर कुछ ही दिनों बाद कैंडी में मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़क उठी। सिंहली बौद्ध समुदाय के कुछ उग्र समूहों ने अल्पसंख्यक मुसलमानों के घरों, दुकानों और मस्जिदों में आग लगा दी। समंदर से गिरा यह छोटा सा और बेहद खूबसूरत देश सुलग उठा था। क्या रही इसकी वजह, इस बार दुनिया जहान में आदर्श राठौर इसी की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहां। श्रीलंका के बीचों बीच पहाड़ों में बसे कैंडी में मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़कने के कारण पूरे देश में 6 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आपातकाल लागू रहा। गृहयुद्ध से जूझ चुके श्रीलंका में ऐसा 7 साल बाद हुआ था। 65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस देश में कई धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और जातियों के लोग रहते हैं। यहाँ की बहुसंख्यक आबादी सिंहली है और सबसे बड़े अल्पसंख्यक तमिल हैं। धर्म के आधार पर बात करें तो 70% आबादी बौद्धों की है, ज्यादातर बौद्ध सिंहली हैं। इसके बाद हिंदू धर्म का नंबर आता है जिसे मानने वाले तमिल हैं। इस्लाम यहाँ का तीसरा प्रमुख धर्म है। मगर इस बहुसांस्कृतिक देश में हिंसा भड़की क्यों? जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर एसडी मुनि बताते हैं कि इसके लिए जातीय असंतुलन जिम्मेदार है।
देखिए, उनकी जड़ों में तो जो वहाँ का जातीय संघर्ष है वही है, जिसमें सिंगलियों और तमिल लोगों के बीच में कोई समन्वय ज्यादा नहीं है। और जैसा आप जानते हैं, मुसलमान लोगों को पहले वो तमिल ही बोलते हैं, तो वो भी तमिल समुदाय में शामिल थे। बाद में वो तमिलों से अलग हो गए, जो उनका संघर्ष हुआ उससे थोड़ा अलग हो गए, लेकिन भाषा वही भाषाई वो भी तमिल के ही है। दूसरी बात ये हुई कि अभी रोहिंग्या मसला जो आया, उसमें बहुत सारे मुसलमान म्यांमार से खदेड़े गए और उसमें से कुछ लोग श्रीलंका में भी आए, जिनको सरकार ने पनाह देने की बात कही। तो जो सिंगली समुदाय है, खासतौर से जो रेडिकल सिंगली समुदाय है, वो उससे काफी नाराज थे और ये उसका नाराजगी का प्रदर्शन करने का जहां उनको मौका मिला तो वो एक छोटी सी घटना से ट्रिगर होके आगे बढ़ गई।
कैंडी में हिंसा की शुरुआत हुई एक सिंगली ड्राइवर की मौत से, जिसकी मुस्लिम युवकों से लड़ाई हो गई थी। लेकिन दोनों समुदायों के बीच तनाव बहुत पुराना है। बौद्धों से पहले श्रीलंका के मुस्लिम LTTE के निशाने पर रहे थे। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त रहे NN झा बताते हैं कि म्यांमार में बौद्ध और रोहिंग्या मुसलमानों के बीच फैले तनाव का असर श्रीलंका पर भी पड़ा है।
LTTE ने एक दो बार वहाँ मस्जिद में नॉर्थ ईस्ट में नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ उनको हमला किया था और बौद्धों को मारा था। मुसलमानों की आबादी वहाँ 7-8% है, लेकिन वो ईस्टर्न प्रोविंस में उनकी संख्या काफी है और ईस्टर्न प्रोविंस का एक भाग है अम्पारे, और वहाँ वो उनकी मोहब्बत है और वहाँ अपना बहुत साल पहले वो अलग काउंसिल चाहते थे वहाँ के लिए, अटॉर्नी सा लोकल काउंसिल। तो ये सब सिंगला को याद रहता है, तो ये सब लेकर के टेंशन रहा है, लेकिन टेंशन वो पर्दे के पीछे था। और ये बर्मा में जो हुआ, म्यांमार में, उसका भी असर पड़ा है। वहाँ भी एक यहाँ भी एक संगठन बनी है बौद्धों की, जो की बुद्धिस्ट सुरक्षा संघ, उसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं हिंदी में। उसके जो नेता है
बोधु बलासेना नाम का कट्टरपंथी बौद्ध संगठन मुस्लिम विरोधी अभियान चलाने के लिए जाना जाता है। इस संगठन के लोगों पर 2014 में हुए मुस्लिम विरोधी दंगों के दौरान भी माहौल खराब करने के आरोप लगे थे। SD मुनि कहते हैं कि इस तरह के संगठन हिंसा को भड़काने के लिए मौकों की तलाश में रहते हैं।
वो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बुद्धिस्ट का, जिसे हम लोग देखते हैं इस्लामिक धर्म में, हिंदू धर्म में एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और हमेशा वही लीड लेते हैं। जैसे छोटी सी घटना थी, उसके दूसरे तीसरे दिन उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों की दुकानों को जलाना, उनके एस्टेब्लिशमेंट्स को जलाना, इन सब काम में वही जो बौद्ध सेना है वही आगे आती है और धर्म के नाम पे वो लोग इस तरह का आक्रामक भूमिका निभाते हैं।
लेकिन सवाल उठता है कि सरकार कहाँ है? ऐसे तत्वों पर काबू पाने में श्रीलंका की सरकार से कहाँ चूक हो गई जो बाद में इमरजेंसी लगानी पड़ी? NN झा बताते हैं कि मौजूदा सरकार अंदरूनी खींचतान के कारण कमजोर हो गई है।
अभी जो सरकार है थोड़ी कमजोर हो गई है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है सिरिसेना और प्रधानमंत्री विक्रमसिंघा दोनों बहुत होनहार व्यक्ति हैं, पला है, लेकिन परंतु आपस में इनका बनता नहीं है। वहाँ पर प्रधानमंत्री जो होम मिनिस्टर भी थे, वो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ से निकाल दिया गया, और ये भी अफवाह है कि वो सिरिसेना और किसी को चाहते हैं प्रधानमंत्री बनाना। गवर्नमेंट अभी दैनिक कार्य में कमजोर हो गई है। पहले तो राजपक्षे साहब थे वहाँ, वो बहुत साल तक थे, बहुत वर्ष तक थे, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी अभी भी है। जैसे अभी जो म्युनिसिपल इलेक्शन हुए थे, उनकी पार्टी ने जीता, तो उनके तरफ से भी आरोप था कि भड़काया जा रहा है इनको डिस्ट्रेट करने के लिए, जो अभी जो मौजूदा सरकार है इनको डिस्ट्रेट करके और इनको कुछ बदनाम किया जाए।
श्रीलंका कई सालों तक गृह युद्ध से जूझता रहा। 1983 से लेकर 2009 तक सरकार और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी LTTE के बीच खूनी संघर्ष चलता रहा। 25 साल से ज्यादा अरसे तक चले इस संघर्ष में लगभग 1,00,000 लोगों की मौत हुई। 2009 में एलटीटीई को खत्म करने और तमिल विद्रोहियों पर जीत हासिल करने के बाद महिंद्रा राजपक्षे की मानवाधिकार उल्लंघन के लिए पूरी दुनिया में आलोचना हुई, मगर वो सिंघली समुदाय के हीरो बन गए थे। लेकिन पिछले चुनाव से पहले उन पर भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के आरोप लगे और उनकी हार हो गई। लेकिन अब एक बार फिर स्थानीय चुनावों में राजपक्षे के समर्थन वाली पार्टी की भारी जीत हुई है। इसे राजपक्षे की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। राजपक्षे को उन ग्रामीण सिंघलियों का समर्थन प्राप्त है जो मानते हैं कि सिरिसेना सरकार मुस्लिमों और तमिलों के प्रति नरम रवैया रख रही है। राजपक्षे खुद भी तमिलों को ज्यादा अधिकार देने के खिलाफ हैं। एसडी मुनि,
राजनीति तो बहुत बड़ी है, राजनीति का ही खेल है। जो बड़ा बड़ा विरोध है अभी की सरकार में, सिरिसेना की सरकार में और राजपक्षे में, वो यही विरोध है कि आप तमिलों से कैसे डील करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो उनको 2009 में जिस तरह से लोगों की हिंसा हुई उसकी जवाबदेही मांगती है, तो उसको आप जवाबदेही मत दीजिए, क्योंकि उसमें राजपक्षे के भाई गोटाबाया और उस वक्त के जो सैनिक नेतृत्व के लोग थे वो कहीं ना कहीं उसमें उलझेंगे, तो वो नहीं चाहते कि ऐसी बातों को आगे बढ़ाया जाए। तो ये जातीय प्रश्न जो है वो राजनीति के पीछे है और राजनेता हमेशा से उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।
सरकार के कमजोर होने के साथ साथ बढ़ता कट्टरपंथ भी श्रीलंका के लिए परेशानियां पैदा कर रहा है। एसडी मुनि कहते हैं कि ये कट्टरपंथ किसी एक समुदाय के लोगों तक सीमित नहीं है।
देखिए, सारे विश्व का माहौल और खासतौर से दक्षिण एशिया का जो माहौल है उसमें रिलीजियस रेडिकलिज्म का बढ़ता हुआ रोल है। मैं मानता हूँ मुसलमान समुदाय सारा का सारा फोकस में है, क्योंकि इस्लामिक जिहाद की वजह से, इस्लामिक रेडिकल की वजह से, टेररिज्म से उनको जोड़ा हुआ है और है भी, उनका उसमें बहुत सारा योगदान भी है। तो दूसरे जो धर्म के समुदाय है वो भी उतने ही रेडिकल हो रहे हैं। बुद्धिज्म जो वैसे शांति का पाठ पढ़ाता है, चाहे आप कोरिया का उदाहरण लीजिए, जापान का उदाहरण लीजिए, श्रीलंका का पुराना उदाहरण लीजिए, वो सब में एक जो अतिवादी ग्रुप होता है धर्म में वो हमेशा काम आता है और वो ग्रुप हटे नहीं है, वो ज्यादा संगठित हुए हैं, ज्यादा कंसोलिडेट हुए हैं।
श्रीलंका के संविधान में बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दी गई है और कहा गया है कि बुद्ध शासन को बचाना और उसे बढ़ावा देना सरकार का कर्तव्य है। ऐसे में सांप्रदायिक हिंसा होने की स्थिति में श्रीलंका की सरकारों के तथाकथित ढीले रवैये पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं। श्रीलंकाई सरकारें मानवाधिकार उल्लंघन के लिए भी पूरी दुनिया की आलोचना का सामना करती रही हैं। गृह युद्ध खत्म होने के बाद भी कुख्यात व्हाइट वैन्स में आम नागरिकों, पत्रकारों और सरकार विरोधियों के अपहरण होते रहे और फिर उनकी लाशें मिलती रही। लेकिन श्रीलंका की सरकारें मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को सिरे से खारिज करती रही हैं। सरकार के अंदर की आपसी खींचतान और बदलते राजनीतिक माहौल के बीच विभिन्न समूहों में बढ़ता असंतोष और कट्टरपंथ श्रीलंका की राह में चुनौतियां पैदा कर रहा है।
दुनिया जहान प्रस्तुत कर रहे थे आदर्श राठौर और बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आज क्रिकेट की दुनिया से यही सबसे बड़ी खबर है जिसके बारे में और जानकारी देने के लिए सूर्यांशी पांडे मेरे सामने बैठी हुई हैं। बताइए।
और बड़े ही दिलचस्प अंदाज में आपने राजेश जी इसका इंट्रोडक्शन किया है और खबर वाकई में हिला देने वाली है स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर के प्रशंसकों के लिए, क्योंकि बॉल टैम्परिंग विवाद में स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए बैन कर दिया है। यही नहीं, बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया है कि वापसी के बाद 1 साल तक स्टीव स्मिथ और सलामी बल्लेबाज कैमरून बैंक्रॉफ्ट को टीम की कमान नहीं सौंपी जाएगी, मतलब उन्हें कप्तान भी नहीं बनाया जाएगा। और जो कैमरून बैंक्रॉफ्ट है, जिनके जो पकड़े गए थे कैमरा में बॉल टैम्परिंग के साथ, उनको 9 महीने का बैन दिया गया है और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की हरकत,
उनको कम सजा मिली है।
उनको कम सजा मिली है और जो ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड के बाद जब हरकत में आई है तब बीसीसीआई हरकत में आई और उन्होंने आईपीएल में बैन कर दिया है डेविड को और डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को, यानी कि वो इस साल के संस्करण में हिस्सा नहीं लेंगे,
नहीं ले पाएंगे। तो ये तीनों के लिए एक तरह से बुरी खबर है,
बुरी खबर है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सूर्यांशी जी। फिलहाल दिन भर में इतना ही, आज समाचारों के लिए समय नहीं बचा। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला दीपक जसरोटिया ने, फेसबुक के जरिए इसे आप तक पहुंचाने में मदद की ब्रजेश मिश्र ने। सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी फिलहाल आप सबसे अनुमति चाहता हूं, कल सुबह 6:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।